सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है महायज्ञ का पुरस्कार। है ना थोड़ा अजीब सा नाम, महायज्ञ और उसका पुरस्कार। जी हाँ, बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी के रचनाकार हैं यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म 1903 में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। किशोरावस्था में ही आपका परिचय एक क्रांतिकारी दल से हो गया और आप भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी बन गए। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने आपको 6 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया। जेल से छूटने के बाद साहित्य सेवा में जुट गए और साहित्य में आपने बहुत नाम कमाया। आपकी भाषा बहुत ही व्यावहारिक और सहज थी, जिसमें बोलचाल के शब्दों का बहुत साधारण ढंग से प्रयोग किया गया था। आपकी शैली बहुत ही सुबोध और सरल रही है। आपकी विशेष रचनाओं में पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञानदान, चिंगारी, झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही आदि अपना विशेष स्थान रखते हैं। साहित्य में इन रचनाओं ने अपना एक विशेष स्थान बनाया है और इन रचनाओं के माध्यम से यशपाल जी ने साहित्य में अपना बहुत नाम कमाया है। तो चलिए शुरू करते हैं महायज्ञ का पुरस्कार। मगर उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पूरी कहानी को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बीच बीच में जो भी कठिन शब्द हैं मैं उनको समझाऊंगी और 1 मार्क आंसर्स भी आपको बताने का प्रयास करूंगी। ये आपके लिए 1 मार्क क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सबके काम आएंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब करिएगा और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महायज्ञ का पुरस्कार। उसके पहले इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये कहानी हमें क्या बताना चाहती है? इस कहानी के माध्यम से यशपाल जी हम सबको निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा तो हिंट आप सबको मिल गया, चलिए आप कहानी शुरू करते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार एक ऐसी कहानी है जिसमें एक धनाढ्य सेठ के बारे में बताया गया है, मगर वो धनाढ्य साथ ही बहुत ही विनम्र और उदार भी हैं। धर्मपरायण इतने कि कोई भी साधु संत उनके द्वार से कभी भी निराश नहीं लौटता, भरपेट भोजन पाता, दान दक्षिणा पाता, भंडारे का द्वार सबके लिए हमेशा खुला रहता था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे, दान में न जाने कितना धन कमाया और कितना धन दीन दुखियों में बांटा था। पर एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी, सब दिन होत न एक समान। अचानक ही दिन बदल गए और सेठ जी को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। जब तक पैसा होता है सब अपने होते हैं, जहाँ पैसा ख़त्म वहाँ सारे रिश्ते नाते ख़त्म, सारी दोस्ती यारी ख़त्म। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, संगी साथियों ने मुंह फेर लिया। वक्त कुछ ऐसा आ गया था कि सेठ और सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों बहुत तरह की प्रथाएं हुआ करती थी। आपने सुना होगा सती प्रथा के बारे में, बाल विवाह के बारे में। एक प्रथा और भी होती थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय, यानी कि बाटर सिस्टम। वो आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा कि जो मेरे पास है मैंने आपको दिया और जो आपके पास है वो आपने मुझे दिया। एक बाटर सिस्टम इस तरह का होता था। एक बाटर सिस्टम ऐसा भी होता था कि हमारे पास जो है हमने आपको दिया, मगर मुझे पैसे की आवश्यकता है तो आपने मुझे पैसा दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो हमने अपनी चीज को बेच दिया। यहाँ पर यज्ञों के फल के क्रय विक्रय की बात हो रही है, यानी कि यज्ञ करने से जो भी हमें फल मिलता था उसे बेच दिया जाता था। यानी कि जो भी हमें पुण्य मिला वो हमने बेच दिया और उसके बदले में हमने कुछ धन प्राप्त किया। यहाँ पर सेठ जी भी अपने किए गए यज्ञों को बेचने आए थे। छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ होता था और उसी के अनुसार उन्हें पैसे मिलते थे। जब बहुत तंगी हो गई थी तो सेठानी ने एक दिन कहा, ऐसा करो एक यज्ञ ही बेच डालो, बहुत मुश्किल काम है मगर कोई रास्ता नहीं सूझता। इसलिए सेठानी सेठ को यही मशवरा देती हैं, यही सलाह देती हैं। ये बात सुनकर पहले तो सेठ जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा भी कहीं होता है कोई अपने पुण्य बेचता है। बट इतनी ज़्यादा तंगी, इतनी ज़्यादा परेशानी, थोड़ी देर के लिए सेठ जी भी सोचते रह जाते हैं और फिर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर बेचा किसको जाए, ये भी एक सवाल होता है। सेठ के गांव से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे, यानी कि बहुत ही धनाढ्य। मगर इसके साथ ही एक अफवाह भी थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बातें जान लेती हैं, यानी कि कुछ भगवान की कृपा है उन पर और वो तीनों लोगों की बातें जान जाती हैं। सेठ जी ने सोचा कि जब बेचना ही है तो किसी ऐसे इंसान को बेचते हैं। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। मुसीबत के मारे विपदाग्रस्त सेठ जी ने उन्हीं को अपना एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर का रास्ता था। सेठानी जी ने पड़ोसियों से बहुत मेहनत करके थोड़ा सा आटा मांगा और सेठ जी के लिए 4 रोटियां बनाई और एक पोटली में बांध करके उन्हें दिया। मगर पहले के लोगों के विचार काफ़ी दूर के होते थे। उन्होंने पानी लिया, लोटा लिया, साथ में एक रस्सी भी ली, क्योंकि पहले कुएं होते थे। पूरी योजना के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अपना यज्ञ बेचने की यात्रा। सुबह तड़के ही सेठ जी कुंदनपुर की ओर चल देते हैं। काफ़ी गर्मी के दिन थे। सेठ जी ने सोचा कि सूरज निकलने से पहले ही जितना रास्ता हो सके तय कर लेता हूँ, क्योंकि पहले तो पैदल ही चलना होता था ना। आज की तरह घोड़े, गाड़ी, ट्रेन, कार नहीं हुआ करते थे। यही सोचकर सेठ जी खूब तेज से चल रहे थे, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते तक सूर्य भगवान एकदम चमकने लगे। धूप इतनी तेज मानो धरती भी आग उगल रही हो, जमीन में पांव नहीं पड़ते थे। पसीने से लथपथ और अब तक भूख भी सताने लगी थी। सेठ जी ने सोचा, सामने एक वृक्षों का कुंज एक बाग जैसा दिख रहा था, चलो यहीं चलकर थोड़ा विश्राम करता हूँ और 2 रोटी खाता हूँ और पास में कुआं भी है, वहीं पानी भी मिल जाएगा। इसी विचार से उस उपवन में जाकर के बैठे, थोड़ा विश्राम किया। सेठ जी जब तक रोटी खाना शुरू करते हैं तब तक आइए हम लोग कुछ कठिन शब्दों के मतलब समझ लेते हैं और कुछ 1 मार्क्स आंसर्स को देख लेते हैं। कठिन शब्दों में यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि द्वार यानी कि दरवाज़ा, डोर, अकस्मात यानी कि अचानक, ऑल ऑफ सडन, क्रय विक्रय, खरीदना बेचना, बिजनेस करना, कोस जो कि एक दूरी नापने की इकाई होती है, डिस्टेंस नापने के लिए, जिसको कि हम किलोमीटर्स, मीटर्स में मानते हैं। पहले के ज़माने में इसको कोस में नापा जाता था। विपदाग्रस्त यानी कि परेशानियों से घिरा होना। पोटली यानी कि कपड़े का थैला, कपड़े का बैग, और उसको एक धागे से या एक पतले से कपड़े से बांध देते हैं तो वो राउंड पोटली बन जाती है। सताना, बहुत परेशान करना, किसी को ट्रबल करना। कृतज्ञता, किसी के प्रति आभार मानना, ग्रैटिट्यूड। हाँ, अभी तक के हमारे इतने ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। आइए कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, सेठ जी कहाँ जा रहे थे और क्यों? सेठ जी कुंदनपुर जा रहे थे, वहाँ के धन्ना सेठ को अपना यज्ञ बेचने के लिए। एक क्वेश्चन और बनता है, सेठ जी की परेशानी का क्या कारण था? सेठ जी की परेशानी का कारण उनकी गरीबी थी। वो बहुत ही दयालु थे, उनके घर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं गया था। आज परिस्थिति बदल गई थी, खुद ही भोजन के लाले थे, इसलिए वो बहुत परेशान थे। एक क्वेश्चन और बनता है, सेठ जी ने अपनी परेशानी दूर करने का क्या रास्ता खोजा? सेठ जी ने अपनी परेशानी दूर करने के लिए अपना एक यज्ञ बेचने का निर्णय लिया। सेठ जी किसको और कहां पर अपना यज्ञ बेचने जा रहे थे? सेठ जी कुंदनपुर के धन्ना सेठ को अपना यज्ञ बेचने जा रहे थे। आइए कहानी आगे शुरू करते हैं और सेठ जी के साथ खाना खाने बैठते हैं। सेठ जी ने कुएं से पानी निकाला, हाथ पैर धोए और एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे। खाने के लिए जैसे ही पोटली खोली, बस रोटी का पहला निवाला तोड़ा ही था कि उन्हें सामने एक बहुत ही छटपटाता हुआ कुत्ता दिखाई पड़ता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिन से उसने खाना ही नहीं खाया है। उसकी पेट और कमर जैसे आपस में चिपक ही गए थे। सेठ को रोटी खोलते देखकर वह बार बार बड़ी मुश्किल से गर्दन उठाता, मगर कमजोरी के कारण उसकी गर्दन जैसे गिर ही पड़ती थी। ये देखकर सेठ का हृदय दया से भर गया और सोचने लगे, लगता है बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ जी ने एक रोटी उठाई और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ता बहुत भूखा था, चट से सारी रोटी खा गया। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं क्या तो शायद इसके पास चलने फिरने की ताकत आ जाएगी। यह सोचकर सेठ जी ने एक रोटी और उठाई, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे खिला दी। दो रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में थोड़ी जान आ गई थी, थोड़ी शक्ति आ गई थी। वह खिसकता खिसकता धीरे धीरे सेठ जी के समीप आ गया। सेठ जी ने देखा कि अभी भी यह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है और आसपास कोई बस्ती भी नहीं है। आखिर ये जाएगा कहाँ? इसके शरीर में तो ताकत भी नहीं है। यही सोचकर सेठ जी ने एक रोटी उसे और दे दी, इस विचार से कि शायद अब वह अच्छी तरह चल फिर सकेगा, और सोचने लगे, मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब सिर्फ एक रोटी बची थी, उसे लेकर वह स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ जी ने देखा कुत्ते की आंखें अभी भी उनकी ओर जमी हुई हैं। उन आंखों में करुण याचना है। सेठ जी के गले से निवाला ना उतरा। अचानक सेठ जी के मुंह से निकला, हाय, बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल जाएगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अपनी आखिरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। दिया जले, सेठ कुंदनपुर पहुंचे, यानी कि शाम होने वाली थी, और उसी समय कुंदनपुर सेठ जी पहुंच गए। सेठ जी हवेली पर पहुंचे, धन्ना सेठ की हवेली पर। धन्ना सेठ ने जब सेठ जी को देखा, दौड़े दौड़े आए, उनका स्वागत किया और पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ जी ने कहा, बड़े संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, खुशी खुशी तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ जी आश्चर्य से सेठानी की ओर देखते रहे और बोलते हैं, महायज्ञ? सेठानी ने कहा, हाँ, महायज्ञ, वही यज्ञ जो आज आपने किया है। धन्ना सेठ की पत्नी से यह शब्द सुनकर सेठ जी काफी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, महायज्ञ? और आज उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनके साथ ठिठोली की जा रही है, मजाक किया जा रहा है। बड़े विनम्र होके बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं है। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ जी, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महायज्ञ किया है। क्या सोचते हैं सेठ जी, राजी हैं? धन्ना सेठ की पत्नी ने फिर से पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, बहुत दुखी मन से कहा, सेठानी जी हंसी ठिठोली ना करें, मेरा मजाक ना उड़ाएं, मुद्दे की बात करें। तब सेठानी ने समझाया, आज रास्ते में स्वयं कुछ न खाकर अपनी चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी बात कहाँ से आ गई? सेठ जी चुपचाप उठे, अपनी पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस कहानी में हमारी कई प्रथाओं की बातें हैं। हमारी एक प्रथा पहले ऐसी भी थी कि पहली रोटी गाय को दी जाती थी और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती थी। अब हम बहुत व्यस्त हो गए हैं, ऐसा नहीं कर पाते, मगर अपनी नानी दादी से पूछिएगा, हमेशा ऐसा होता था। इसका कारण भी आज मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं गाय में सभी देवों का वास होता है, इसीलिए पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को क्यों दी जाती है? उसके भी कई कारण हैं। कहते हैं जिनके ऊपर राहु केतु शनि की दशा होती है, वो लोग कुत्ते को अगर चुपड़ी रोटी खिलाते हैं, घी से चुपड़ी रोटी, तो उनके ग्रह शांत हो जाते हैं। तो आप भी कोशिश करिएगा कम से कम पहली रोटी गाय के नाम की। चलिए आगे कहानी देखते हैं। सेठ जी चुपचाप कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट बैठे रहे। बड़ी मुश्किल से रात बिताई, पांव फटते ही अपने गांव की ओर चल दिए। शाम होते होते अपने घर पहुंचे। सेठानी जी बड़ी आशा लगाए, बड़ी उम्मीद से सेठ जी का इंतजार कर रही थी, मगर सेठ को खाली हाथ देखकर जैसे वो कांप ही गईं और बहुत निराश हो गई थी। सेठ ने सारी कथा सेठानी को सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहां विलीन हो गई, मगर मन ही मन बहुत ही खुश हुई और अपने पति पर बड़ा गर्व भी हुआ और सोचने लगी, इतनी विपत्ति होने के बाद भी सेठ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, धन्य है, धन्य है ऐसे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोलती हैं, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे, ये भी हमारी परंपरा है, ये भी हमारी प्रथा है कि हम कितनी भी मुश्किल में हैं, हम भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं, वो हमारी नैया जरूर पार लगाते हैं। आगे देखते हैं। रात को अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी ने उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई, मगर रास्ते में किसी चीज से टकरा जाती हैं, गिरते गिरते बचती हैं। दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डालती हैं तो देखती हैं दहलीज के सहारे एक पत्थर अपने आप ही ऊंचा हो गया है और उसके बीच में एक कुंडा भी लगा है। इसी कुंडे से तो उन्हें ठोकर लगी थी, मगर तभी वो सोचने लगती हैं, शाम तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, अचानक ये क्या हो गया? फिर सेठ को बुलाकर कहती हैं, जरा देखो यह पत्थर यहाँ कैसे अपने आप ऊंचा उठ गया। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा, दोनों ने ही, सेठ ने और सेठानी ने, तो उन्हें पता चला कि यह किसी चीज का ढक्कन जैसा लगता है। आखिर माजरा क्या है, आखिर ये हो क्या रहा है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी दिखाई पड़ने लगी। सावधानी से सेठ और सेठानी धीरे धीरे दिए की रोशनी के सहारे नीचे उतरने लगे। थोड़ा डर भी लग रहा था, मन भी घबरा रहा था, साथ में बहुत सारी उत्सुकता भी थी, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने घर में ऐसी सीढ़ियां नहीं देखी थी। नीचे उतरते उतरते अचानक ही उन्हें इतना प्रकाश दिखाई पड़ता है कि आंखें चौंधियाने लगती हैं। सेठ जी ने देखा, वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा था। तहखाने का मतलब होता है अंडरग्राउंड स्टोरेज। देव की इस माया के रहस्य को उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े रहे, एकदम स्टैचू की तरह दोनों ही खड़े थे। तभी कहीं अचानक से आवाज आती है और बहुत स्पष्ट स्वरों में उन्हें सुनाई देता है, अरे ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने उस मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह उसी महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वार्डिंग को सुनकर धन्य हो गए। वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही मज़ेदार कहानी। आइए अब इसके थोड़े से कठिन शब्दों को और वन मार्क क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके कठिन शब्द कुछ इस तरह से हैं, मूक यानी कि गूंगा जो बोल नहीं सकता है, प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आता है हम किस तरह से उसका स्वागत करते हैं, विस्मित, विमूढ़ मीन्स एकदम हैरान, परेशान, निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, अन्न देना मीन्स भोजन देना, खाना देना, कर्तव्य ड्यूटी फर्ज, आद्योपात शुरू से अंत तक फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, वेदना दुख तकलीफ बहुत ही कष्ट पेन, उल्लासित उत्साहित वेरी एक्साइटेड, विपत्ति कठिन समय प्रॉब्लम, अंधकार अंधेरा डार्कनेस, रजमस्तक पैरों की धूल, भौचक्की हैरानी, टिमटिमाती जगमगाती ट्विंकलिंग स्पष्ट साफ, पुरस्कार इनाम प्राइज, कृतकृत्य प्रसन्न। तो ये हुए कुछ कठिन शब्द। आइए कुछ वन मार्क क्वेश्चंस भी देखते हैं। सेठ को धन्ना सेठ की पत्नी ने क्या कहा? सेठ को धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि हमें यज्ञ तो खरीदना है परंतु आपके द्वारा किया गया महायज्ञ ही खरीदना है। सेठानी अचानक हैरान क्यों हो जाती है? रात को दिया जलाते समय जब सेठानी के पैर में चोट लगती है और वो देखती हैं एक पत्थर ऊंचा उठ गया है तो यह देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती हैं। सेठ को महायज्ञ का क्या पुरस्कार मिला? सेठ को तहखाने में जवाहरातों की भरमार मिली, उनकी सारी गरीबी दूर हो गई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपको क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, भूखे कुत्ते को देखकर सेठ के मन में क्या विचार आए? भूखे कुत्ते को देखकर सेठ को लगा शायद ये कई दिनों से भूखा है, उसके शरीर में चलने की ज़रा सी भी ताकत नहीं थी, उसका पेट और पीठ आपस में मिल गए थे। सेठ का मन करुणा से भर गया था। सेठ जी सेठानी की किस बात से आश्चर्यचकित हो गए थे? सेठ जी सेठानी की बात से आश्चर्यचकित हो गए थे जब सेठानी ने कहा कि हमें आपका महायज्ञ खरीदना है। तब सेठ जी सोचने लगे, मैंने तो कोई महायज्ञ वर्षों से नहीं किया है, हमारी यहाँ ठिठोली की जा रही है, मजाक बनाया जा रहा है। तो ये हुए कुछ प्रश्न, कठिन शब्द। तो हमारी आज की कहानी महायज्ञ का पुरस्कार यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई और इंटरेस्टिंग भी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और फिर भी अगर कहीं आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम हमेशा आपके साथ हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच।